যেমন তীরাবন চারে যমুনা তীরাবন চারে জয়া রাধা মাধব জবিহারে জয়া রাধা মাধব জবিহারে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে হে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 জয় রাধা গিরিধারে রাধা গিরিধারে রাধে জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় বলদেবা জয় সুভদ্রা জয় গৌরনিতায় 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 জয় গৌরনিতায় নিতায় গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতায় গৌর জয় জয় প্রভুপাদ 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 শ্রীল প্রভুপাদ কি জয় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तेर्भवति नैश्चिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक संख्या 22। असंकल्पाज्जयेत् कामा असंकल्पाज्जयेत् कामा क्रोधं काम विवर्जित विवर्जनात् क्रोधं काम विवर्जनात् क्रोधं काम विवर्जनात् अर्थानोर्थेक्षया लोभम् अर्थानर्थोक्षया लोभम् भयं तत्त्वमर्षणात् भयं तत्त्वावमर्षणात् असंकल्पाज्जयेत् कामम् असंकल्पाज्जयेत् कामम् क्रोधं काम विवर्जनात् क्रोधं काम विवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया का लोभम् अर्थानर्थेक्षया लोभम् भयं तत्त्वमर्षणात् भयं तत्त्वावमर्षणात् असंकल्पाज्जयेत् कामम् क्रोधं कामविवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया लोभम् भयं तत्त्वाविमर्शनात् कल्पाजयेत् कामम् लोभम् भयं तत्त्वाविमर्शनात् अर्थानर्थेक्षया लोभम् भयं तत्त्वाविमर्शनात् संकल्पाज्जयेत् कामम् क्रोधं कामाविवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया लोभम् भयं तत्त्वाविमर्शनात् असंकल्पाज्जयेत् कामम् क्रोधं कामाविमर्शनात् अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वाविमर्शनात् असंकल्पाजयेत् कामं क्रोधं कामाविवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया लोभं अयं दत्वा मर्षणात् माताजी असंकल्पा जयेत् कामं क्रोधं कामाविवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं दत्वा विमर्शनात् असंकल्पाज्जयेत् कामं क्रोधं कामाविवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं दत्वा विमर्शनात् असंकल्पाज्जयेत् कामं क्रोधं कामविवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं दत्वा विमर्शनात् असंकल्पाज्जयेत् कामं क्रोधं कामविवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्वा विमर्शनात् असंकल्पात् संकल्प से जयेत जीते कामान कामेच्छाओं को क्रोधम क्रोध को काम विवर्जनात् इंद्रिय इच्छा के विषय को त्याग देने से अर्थ धन संग्रह अनर्थ दुख का कारण ईक्षया मानने से लोभम भयम लोभम लोभ को भयम भय को तत्व सत्य अवमर्शनात् मानने से अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। संकल्प पूर्वक योजनाओं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की कामना पूर्ति इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने सुझाया है कि किसी तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त की जाए। कोई भी मनुष्य स्त्रियों के विषय में सोचना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस तरह सोचना स्वाभाविक है। यहाँ तक कि सड़क पर चलते हुए उसे अनेक स्त्रियां दिखेंगी, किंतु यदि कोई स्त्री के साथ ना रहने का संकल्प कर ले तो वह स्त्री को देखकर भी कामुक नहीं होगा। यदि कोई मैथुन ना करने का निश्चय कर लेता है तो वह विषय
वासनाओं पर स्वतः विजय प्राप्त कर लेगा। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई भूखा हो किंतु यदि किसी दिन उपवास करने का संकल्प कर ले तो वह भूख प्यास की बाधाओं को झेल सकेगा। यदि कोई संकल्प कर ले कि वह किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा तो वह सहज ही क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वह धन संचय करने की इच्छा को त्याग कर सकता है। यदि वह इतना ही सोच ले कि अपने अधिकार में आए धन की रक्षा करना कितना कठिन है, यदि किसी के पास प्रचुर नकदी धन रहता है तो वह उसे ठीक से रखने की विषय में चिंतित रहता है। इस तरह यदि कोई धन संचय के अवगुणों की विषय के ऊपर चर्चा करता है वह बिना कठिनाई के उनका व्यवसाय छोड़ सकता है। ओम अज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगणलिता शिविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंधौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले श्लोक में हमने नारद मुनि के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को उपदेश में सुना, चाहे गए कोई भी व्यक्ति भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पदवी में क्यों ना हो, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी महान कोई भी दृष्टिकोण से महान भी क्यों ना हो, अगर उनके पास एक धन नहीं है, संतुष्टि नामक धन नहीं है, संतृप्त नहीं है, तो वो व्यक्ति का निश्चित रूप में आज नहीं तो कल पतन होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, भगवीता में भगवान कहते हैं संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट सततम योगी। सततम योगी का अर्थ है हमेशा योग में रहना, योग का अर्थ है भक्ति, भगवान से जुड़े रहना। अगर कृष्ण के साथ हमेशा भक्ति पूर्वक जुड़ा रहना है तो हमको संतुष्ट होना अति आवश्यक है। इसलिए ये संतुष्ट सततम योगी का ये अर्थ है कि आप संतुष्ट रहो, सतत योगी रहो, दूसरा अर्थ है जब तक हम अपने अपना भौतिक चीजों से जो भी प्राप्त होता है अपनी कर्म के हिसाब से उससे संतुष्ट नहीं है तब तक सततम योगी नहीं रह सकते। तो इसलिए संतुष्ट होना अति आवश्यक है। तो संतुष्ट होने का अर्थ क्या है? अर्थ है कि हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ इत्यादि जो है इन चीजों के ऊपर काबू पाना। तो ये श्लोक में आज के श्लोक में काम क्रोध लोभ और भय ये चार चीजों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है उसका वर्णन किया गया है। सबसे पहला लाइन में लिखा हुआ है कि काम के ऊपर कैसे क्रोध किया जा सकता काम के ऊपर कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या किया गया है? असंकल्पा जयेत कामन। काम के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो हमको संकल्प धारण करना है, ये पहला बात है। दूसरा है क्रोधम काम विवर्जनात्। काम को त्याग करने के द्वारा ही क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्या है? अर्थान अनर्थ छे लोभान। लोभ के ऊपर विजय प्राप्त करना है ये अर्थ का अनर्थ के ऊपर चर्चा करना। ये अर्थ जो है यानी धन जो है कितना वो अनर्थ है कितना व्यर्थ है तो उसके ऊपर विचार करना, इसके द्वारा लोभ के ऊपर जय किया जा सकता है। तो भय के ऊपर कैसे जय किया जा सकता है? भय के ऊपर तत्व विमर्शनात्, तत्व ज्ञान चित्त अचित ईश्वर भेदान इनके ऊपर विचार करने के द्वारा भय के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो ये चतुर्विधन ये चार चीजों का वर्णन किया गया है कि ये चार चीजों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है। केवल चार चीजें नहीं, ये असंतुष्टि के वजह से ये चार चीजें अपने आप प्रकट होता है एक के बाद एक। काम के बाद क्रोध, क्रोध के बाद लोभ, लोभ के बाद भय। तो इन चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो हमको क्या करना है, एक एक शब्द में स्पष्ट रूप में नारद मुनि वर्णन करते युधिष्ठिर महाराज को। जैसे आप सबको मालूम है कि ये जो अध्याय चल रहा है ये अध्याय का शीर्षक है सभ्य व्यक्ति का कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए। सभ्य मनुष्यों के लिए उपदेश। सभ्य मनुष्यों के लिए उपदेश का अर्थ है कि अगर समाज में सभ्यता बना के रखना है तो इन उपदेशों को पालन करना चाहिए। जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था उस समय संस्कृत का सब्जेक्ट था, उधर एक श्लोक था, अगर समाज में आपको संतुष्ट रहना है, समाज की कल्याण होना है तो कैसे व्यक्तियों से ये समाज बनना चाहिए और कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कहा गया है, दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने प्रीति साधुजने कांता जने दृढ़ता एच एवं पुरुषा कलासु लोक कुशलास्तेष्वैव लोकस्थितिः। ऐसा कहा गया है कि कुशलास्तेष्वैव लोकस्थितिः, ये लोक की जो स्थिति है वो कुशल यानी सभ्य लोगों के साथ तभी होगा, ये कुशल तभी होगा जब इन चीजों को पालन किया जाए। उनमें से क्या है? दाक्षिण्यम स्वजने। स्वजने का अर्थ है अपना जो पत्नी बच्चे परिवार वाले उसको स्वजन कहा जाता है। इनके प्रति दाक्षिण्यता होना चाहिए क्योंकि वो स्वाभाविक तरीके से उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है और बार बार मांगते रहते हैं ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन उन मांगों को पूर्ण करने का प्रयास नहीं करना है, खाली दाक्षिण्यता दिखाना है। देखो अज्ञान के वश ऐसा बोल रहे हैं, चलो थोड़ा सा सुन लेते हैं, सांत्वना देके उनको थोड़ा सा शांत रखते हैं। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान जिनका नहीं है और भौतिक जीवन की वजह से वो बहुत दुखी है, उनके ऊपर दया दिखाना चाहिए। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने। अगर कोई व्यक्ति अपना जो परिवार वाले के प्रति दया दिखाने जाता है वो कभी होने वाला नहीं है। दया का अर्थ है कि आध्यात्मिक ज्ञान देना। अपने परिवार वालों को कितना भी आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए प्रयास करो वो कभी संभव होने वाला नहीं है, वो कभी सुनेंगे नहीं आपकी। तो इसलिए दाक्षिण्यता स्वजन स्वजने दया परिजने, प्रीति साधु जने, लेकिन ये प्रीति जो है ये जीव का स्वभाव है, किसी ने किसी से प्रीति करना है तो प्रीति किससे करें, तो प्रीति साधु जने, साधुओं के प्रति प्रीति सजने। साट्यम सदा दुर्जने, तो दुर्जन होते हैं उनके प्रति बहुत कठोर भाव रखना है, क्योंकि वो दुर्जन को थोड़ा सा भी मौका देंगे वो क्या करेगा, पूरा समाज में उत्पात मचाएगा। प्रीति साधने नए नृपजने, जो वरिष्ठ होते हैं यानी राजा है या माता पिता है या उम्र में ज्ञान में बड़े होते हैं, उनको हमेशा आदर देना, उनके सामने हमेशा नम्र बना के रखना चाहिए। और प्रीति साजने नए नृपजने, कांताजने दृढ़ता, इसमें क्या है, कांताजने का अर्थ है स्त्रियों के प्रति दृढ़ भाव रखना चाहिए। जब तक ये कांताजने दृढ़ता नहीं रहता है तब तक जितने भी आप अच्छे गुणों को संग्रह करने के लिए प्रयास कीजिए वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। कांताजने दृढ़ता ये चैवम पुरुषाः कुशलास्ते श्वैव लोकस्थिति। तो इस प्रकार ये बचपन में ही पहले जमाने में ऐसी शिक्षा दिया जाती थी कि आप क्या रहो, खास करके कांताजने दृढ़ता। ये बात इधर कहा गया है कि किस प्रकार अपने काम को वश में किया जा सकता है। वैसे काम को वश में करने के लिए बहुत सारे चीजों को बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन इधर जो बताया गया है वो मूलभूत शिक्षा है। भले ही कितने भी शिक्षाएं काम को विजय करने के ऊपर दिया गया, वो सारे शिक्षाओं को पालन करो, अगर ये जो शिक्षा इधर दिया गया है इस लाइन में अगर वो नहीं है, कितना भी लाख प्रयास करो वो नहीं हो पाएगा। वो क्या है, वो शिक्षा इधर दिया गया है वो है असंकल्पात जयत कामा। संकल्पात, असंकल्पात करते, संकल्प मतलब मुझे डिटरमिन्ड रहना, मुझे करना है। असंकल्पात का अर्थ क्या है, मुझे नहीं करना है या नहीं इसमें जुड़ना है, मुझे काम को त्याग करना है। पहला, काम को विजय करने के ऊपर अनेकों अनेकों विधियां, अनेकों अनेकों चीजें हैं, लेकिन वो सारे विधियां तभी काम के हैं जब हमारे हृदय में ये संकल्प है मुझे इसको आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे ये कामनाओं को त्याग करना है। तो एक जगह बड़ा प्रवचन चल रहा था कि कैसे काम को वश में किया जा सकता है। पूरा एक घंटा प्रवचन के बाद तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि कोई समस्या है, कोई संशय है, कोई डाउट है। तो उसमें से एक व्यक्ति ने पूछा, आपने ये सब कुछ बताया कि काम को विजय करना चाहिए, आपने ये नहीं बताया कि क्यों करना चाहिए। तो व्यक्ति जो प्रवचन दिया वो सोचा है मेरा पूरा प्रवचन बेकार में गया। यानी काम को कैसे विजय करना चाहिए वो उन व्यक्तियों के लिए है जो चाहते हैं कि मैं विजय प्राप्त करूं, लेकिन आजकल की स्थिति ऐसी है कोई चाहता नहीं है। अगर उस प्रसंग में कोई व्यक्ति कहना चाहता है उसे बोलते नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं है, आप बताते क्यों हो। मान लीजिए आप बोलोगे कि आपको अगर ये ऐसे ऐसे करना है, ये करोगे तो ये प्राप्त करोगे, इसके ऊपर विजय प्राप्त करोगे। तो व्यक्ति कहता अरे मुझे तो काम के ऊपर विजय प्राप्त करना ही नहीं है, मुझे तो काम के वशभूत में रहना है। उल्टा अगर मेरी कामनाओं को बढ़ाना है, तो हम आध्यात्मिकवादी की समस्या क्या है कि कामनाएं बहुत है, ये हमारी समस्या है। लेकिन बहुत साल पहले एक डॉक्टर से बात कर रहा था, उस डॉक्टर ने कहा कि क्या अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है आध्यात्मिकवादी और भौतिकवादियों के बीच में। आपकी समस्या है काम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन भौतिकवादियों की समस्या है कि उनके अंदर कामना जागृत नहीं हो रहा है। लेकिन ये विचार जो है ये खास करके भक्तों के लिए है, भौतिकवादियों के लिए नहीं है, क्योंकि भक्त ये निश्चित रूप में समझ चुका है ये जो काम है ये मेरे दुख का कारण है, ये भौतिक इच्छाएं जो है मेरे दुख का कारण है। तो ये समझ गया है तो इसलिए उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो विजय प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए सबसे पहला क्या, असंकल्पात। जब तक ये डिटर्मिनेशन नहीं है, संकल्प नहीं है मुझे विजय करना है, तब तक कितना भी आप प्रयास करो अनेकों विधियों का, वो सारे विधियां जो है वो केवल नाश होंगे, देयर बी नो यूज ऑफ इट। इसलिए असंकल्पात ये शब्द किया गया है। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है ऐसा कैसे होगा, हाउ? तो श्री विश्वनाथ ठाकुर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। उदाहरण श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्राय सभी आचार्य केवल विश्वनाथ ठाकुर ही नहीं, जिस श्लोक के पठिका में इसी बात को वर्णन करते हैं। जैसे उपवास होता है, उपवास के दिन अन्न नहीं खाना है या मुझे आहार नहीं ग्रहण करना है आज, ऐसा कोई संकल्प लेता है, वो लेने पर क्या होगा, भले उसके सामने कितने भी लोग खाए, कितने भी लोग कुछ भी, कितना भी सुंदर पकवान भी बने, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको त्याग कर दिया। उसी प्रकार भले ही हर जगह बहुत सारे कामनाओं को जागृत करने वाले चीजें हैं, फिर भी अगर कोई व्यक्ति ये संकल्प लेता है, नहीं मुझे इसे लेना देना नहीं है, मुझे इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है और मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे इसको उसको प्रोत्साहन नहीं करना है, ऐसा एक संकल्प लेके बैठ जाता है, तो वो पूरा दिन जैसे उपवास में निकल जाता है उसी प्रकार उसका पूरा जीवन भी निकल जाता है। अब उससे संकल्प ले रहे, मुझे तो किसी के साथ कोई संबंध नहीं, कुछ मुझे उनके लेना देना नहीं है, ऐसा कोई संकल्प लेके बैठ जाता है तो जीवन जो है उसका निकल जाता है, इट गोज अवे, उनको कोई जरूरत नहीं पड़ता है। भूख रहने पर भी उसको निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवताएं भगवान कहते हैं कि भले ही वो बद्ध जीव के अंदर रहता है, इच्छाओं को पूर्ण करने की इच्छा कामनाएं रहती हैं, लेकिन निराहारस्य, मैं उसको आज आहार नहीं दूंगा, ये जीवन में उसको आहार नहीं दूंगा, वैसा संकल्प लेने से वो अपने आप मिट जाता है। ये भौतिक इच्छा जो है ये इस प्रकार है, उसको जितना आप आहार दोगे, जितना उसको संतुष्ट करने के प्रयास करोगे, उतना वो बढ़ता है। इसलिए भगवद गीता में तीसरे अध्याय में भगवान एक काम के विषय में बहुत सुंदर प्रकार अनेकों श्लोकों में वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ये नित्य वैरीना, ये बहुत बड़ा वैरी है, ज्ञानिनो नित्य वैरीना, खास करके ज्ञानिनो। वैसे एक ज्ञानिनो जो शब्द का एक अर्थ है कि आत्मा, ये आत्मा का यानी जीव का वैरी है, दुश्मन है, लेकिन एक ज्ञानिनो शब्द का और एक अर्थ लेंगे, यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे, आध्यात्मिक मार्ग में जो आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, उसके लिए खास करके दुश्मन है। क्यों? ये काम जो है ये भौतिकवादियों के लिए तो मित्र है, भौतिकवादी सोचते हैं वाह वाह अभी मुझे काम, मन में काम जागृत हुआ है तो अभी मैं सुख को प्राप्त करूंगा, उसके लिए मित्र नहीं, उसके लिए मित्र है वो, लेकिन खास करके ज्ञानी नो नित्य वैरी ना, ये ज्ञानी जो है जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है वो समझ गया है कि मेरा दुश्मन है काम, मेरा दुश्मन है, तो उसके लिए दुश्मन के जैसे व्यवहार करता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका जो पड़ोसी है या पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान जो भी है समझ लीजिए, वो पड़ोसी देश को जब तक आप मित्र समझेंगे वो आपके साथ मित्रता का व्यवहार करेगा, मित्रता का व्यवहार करके क्या करेगा, वो आपका आपको लूटता जाएगा। लेकिन जैसे आपको समझ में आ जाता है ये जो व्यक्ति मेरा मित्र नहीं है, मेरा दुश्मन है, वो मुझे लूट रहा है, तुरंत वो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, दूसरा देश वाला आपके साथ दुश्मनी करेगा। तो ये जो दुश्मनी और मित्रता है किसके ऊपर आधारित है, ये आधारित है हमारी ज्ञान के ऊपर। तो भौतिकवादी सोचता है कि ये जो काम है, ये भौतिक इच्छाएं हैं, ये मेरे मित्र है, लेकिन जैसे उनको मालूम पड़ता है कि ये मित्र के रूप में मुझे लूट रहा है, तो तुरंत वो जो मित्र तथाकथित मित्र है वो कैसे व्यवहार करेगा, दुश्मन के रूप में व्यवहार करेगा। तो इसलिए कहा गया, क्या कहा गया, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये खास करके जो ज्ञानी है यानी भक्त भी, यानी हम ये ज्ञान का अर्थ है कि हम लोग इधर भौतिक जगत से मुक्त होके भगवान की धाम में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ज्ञानिनो खास करके ज्ञानियों के लिए दुश्मन का दुश्मन है। भौतिकवादियों के लिए काम जो है वो दुश्मन का कार्य नहीं करता है, क्यों, उसको तो मजा आ रहा है क्योंकि आप मित्रता के रूप में स्वीकार कर रहा है, तो सोचता है मित्रता के तो मैं दुश्मनी क्यों दिखाऊं उनको, मित्र बनूंगा और मित्र बन के धीरे धीरे से उसका पूरा मैं लूट लूंगा। तो लेकिन जैसे उसको मालूम पड़ता है कि ये जो व्यक्ति है ये जो काम है मुझे लूट रहा है, तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या होगा, ये वही काम जो है वो दुश्मन के रूप में व्यवहार करना शुरू करता है, वो परेशान करता है। इसलिए काम खास करके भक्तों को परेशान करता है, भौतिकवादियों को परेशान नहीं करता। भौतिकवादियों को तो उल्टा वो दिलता है, वेरी गुड, लो अच्छा है। तो इसलिए संकल्प लेना चाहिए, देयर शुड बी ए दृढ़ संकल्प। ये दृढ़ संकल्प के बिना कितना भी आप प्रयास करो काम से मुक्त होने के लिए, वो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है। तो आगे चलते हुए क्रोधाम काम विवर्जित, तो दूसरे लाइन में कहा गया है ये क्रोध, ये क्रोध तभी हम जय कर सकते हैं क्रोध के ऊपर, जब काम के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये जो क्रोध है ये काम का छोटा भाई है। छोटा भाई का अर्थ है क्या है, जैसे बच्चा जन्म होता है, पहला बड़ा भाई जन्म लेता है और पीछे पीछे छोटा भाई जन्म लेता है, जैसे एक छाया जो है पीछे पीछे चलता है, ये काम के पीछे क्रोध चलता है। आप सबको ये मालूम है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कामात क्रोधो भी जायते, ये काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये क्रोध का कोई अलग इलाज नहीं है। आजकल भौतिकवादी साइकोलॉजिस्ट वगैरह वो सोचते हैं कि क्रोध जो है वो खराब है। एक जगह कॉलेज में एक बार प्रवचन हुआ था, उधर एक स्टूडेंट ने मुझे प्रश्न पूछा, मेरा सब कुछ ठीक है लेकिन मैं ना बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मैं कैसे कंट्रोल करूं। मैंने कहा अगर मैं सच बताऊं तो आप सोचेंगे रहने दो क्रोध। तो सब लोग गंभीर हो गए। मैंने कहा अगर क्रोध को नहीं चाहते अपने जीवन में, आप अपना इच्छाओं को कम करना है। जब तक अपने मन में इच्छाएं हैं तो स्वाभाविक तरीके से वो क्रोध रहेगा। तो लोग क्या चाहते हैं, मेरे हृदय में भौतिक इच्छाओं को भी वर्धन हो और साथ में जो है क्रोध जो है वो कम हो जाए। क्रोध नहीं चाहिए, काम चाहिए, कामनाएं चाहिए, और ज्यादा कामनाएं होना चाहिए, लेकिन क्रोध नहीं चाहिए। प्राय लोग समझते हैं इस बात को, भौतिकवादी समझते हैं मुझे क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध नहीं, क्रोध की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि जितना प्रयास से अपनी कामनाओं को पूर्ण करने जो चीजों को इकट्ठा किया, वही चीज जो है क्रोध की वजह से मैंने उसको नाश कर दिया, इसलिए मुझे क्रोध नहीं चाहिए, ऐसा विचार रहता है। लेकिन उनको नहीं मालूम, और ये वो सोचते हैं कि क्रोध को कंट्रोल करने के लिए मैं अलग अलग प्रकार का प्रयास करूंगा। ऐसा कोई एक व्यक्ति ने कहा, अगर जब आपको क्रोध आता है ना तो क्या करो, आप उल्टा गिनो, 10 से 1 तक या 10 से 0 तक उल्टा गिनो, आपका क्रोध चले जाएगा। और किसी ने कहा कि आपको अगर क्रोध आता है तो अपना जो हाथ है ना ऐसा पूरा टाइट रखो, ऐसा पीछे रखो, ऐसा अनेकों कुछ टेक्निक्स बताते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो है कोई फायदा नहीं, देयर इज नो यूज ऑफ इट। क्रोध को कंट्रोल करना है, क्या करना है, अपने काम को कंट्रोल करना है। ये जैसे बुखार को कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना होगा, तो ये शरीर को बीमारी को ठीक करना होगा। जब तक बीमारी ठीक नहीं होगा बुखार ठीक नहीं होगा। अगर वो बुखार के ऊपर आप पानी डालते जाएंगे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो टेम्परेचर डाउन हो जाए, वो टेम्परेचर डाउन नहीं होने वाला है। जब तक अंदर का इन्फेक्शन नहीं जाएगा तब तक नहीं हो जाएगा। ये जो काम है वो रोग है, और ये क्रोध है वो बुखार है, वो सिम्टम है। पहले अस्तित्व में रोग रहता है, उस समय बुखार नहीं आता, जब रोग बढ़ जाता है तो बुखार आता है। तो बुखार रोग नहीं है, बुखार जो है वो रोग का एक लक्षण मात्र है। इसलिए वो बुखार को उतारने के लिए आप जितना भी टैबलेट लो वो फर वापस आएगा, वो कुत्ते की पूंछ के बराबर है। कितना भी कुछ भी करो वो सीधा नहीं होने वाला है, जब तक उसको कोई डंडा लेके बांधेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो उसी प्रकार ये काम जो है वो क्या है, वो एक रोग के बराबर है, जिसकी वजह से एक क्रोध आता है। अगर क्रोध को पर जय प्राप्त करना है, काम को कम करना है, तो इससे क्या पता लगता है, जो व्यक्ति ज्यादा क्रोधित होता है इसके अंदर बहुत सारे काम है, कामनाएं हैं, यही लक्षण है। तो उस कॉलेज के प्रवचन में इस बात को बताया, मैंने कहा कि आप सब लोग कितना लोग चाहते हो कि अपने जो क्रोध को नियंत्रण करना, कितने लोग चाहते हो क्रोध नहीं चाहिए आपको, सब लोगों ने हाथ उठाया। तो मैंने पूछा कितने लोग चाहते हो आपके पास कोई भौतिक इच्छा ना हो, इच्छा ना हो, तो कोई हाथ नहीं उठाया। तो बोला ये असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। ये मूर्खता है भौतिकवादियों का, अज्ञानियों का मूर्खता है। वो चाहते हैं कामनाओं को लेकिन क्रोध को नहीं चाहते, ऐसा नहीं होगा। आपको लेना है तो एक पैकेज पूरा लेना पड़ेगा, काम भी लो और क्रोध भी साथ में लो। उस जिस क्रोध के द्वारा आपका जो काम है जिससे उत्पन्न हुआ सुख है वो पूरा खत्म हो जाए। हाँ, ये जो काम के लिए सामग्री इकट्ठा किया है उसको भी नाश कर दोगे। तो ये दुनिया का बनावट ही ऐसा है भगवान का कि एक व्यक्ति बहुत इच्छाओं के द्वारा बहुत सारा चीजों का संग्रह करता है, तो इच्छा है तो तुरंत वो आएगा, आज नहीं तो कल वो क्रोध आया। मान लीजिए इच्छा की वजह से, बहुत ही इच्छा की वजह से उन्होंने एक टीवी खरीदा, टीवी खरीद के वो टीवी देख रहा है, तो टीवी देख रहा है, क्या देख रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है। तो उसके अंदर उसको बहुत इच्छा थी कि इंडिया जीते लेकिन वो हार गया, तो उसको बहुत क्रोध आया। वो क्रोध से क्या किया उसने, वो टीवी को ही तोड़ दिया। यानी जिस जो अपनी इच्छा को पूर्ण करने का साधन है वही साधन वही इच्छा खत्म कर देती है। ये जो है ये दुनिया की रीति है। तो इसलिए क्या कहा गया इधर, क्रोधम काम विवर्जयेत। बाद में जब क्रोध आने के बाद और एक चीज आता है, लोभ। ये लोभ क्यों आता है? ये लोभ स्वतः प्रकट नहीं होता है, वो काम से लोभ प्रकट नहीं होता है। ये लोभ का थोड़ा सा डायरेक्शन कुछ अलग है। मान लीजिए हमारे अंदर, मेरे अंदर कुछ इच्छा है, मुझे एक कार चाहिए, तो वो कार को प्राप्त किया। अगर प्राप्त नहीं किया कर पाए तो क्रोध आता है, अगर कर लिया तो बहुत खुश हो जाएंगे, वाह। लेकिन जैसे मैं किसी और की कामेच्छा की पूर्ति को देखता हूं, यानी दूसरों की कामेच्छा को पूर्ति देखता हूं, तो तुरंत ये लोभ प्रकट होता है। अरे इसके पास तो इससे अच्छा कार है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये जो लाइन में क्या ट्रांसलेशन करते हैं कि By discussing the disadvantage accumulated, one should give up greed. तो इधर by giving up envy, one should conquer anger. तो envy, ये जो ईर्ष्या के बारे में लिखते हैं, ईर्ष्या जो है ये लोभ और क्रोध का कारण होता है। तो ये लोभ और क्रोध का कारण क्यों है? ईर्ष्या है। तो हमारी कामनाओं से जब संतुष्ट हो जाते हैं लेकिन फिर भी दूसरों की काम इच्छा की पूर्ति देखते हुए तुरंत हमारे हृदय में ये क्रोध और लोभ प्रकट होता है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि एनवी, ईर्ष्या को त्याग करना है। तो ये जो ये लोभ हमको क्या प्रेरित करता है? और चाहिए, और चाहिए, और धन चाहिए, इसलिए प्रेरित करता है। काम में और लोभ में अंतर ये है। काम में क्या अंतर है? काम क्या है कि मुझे ये चाहिए। लोभ का अर्थ क्या है? और चाहिए। ये दोनों में सूक्ष्म अंतर है। ये लोभी व्यक्ति होता है वो जो व्यक्ति वो क्या कहते हैं, मुझे और चाहिए। कामी व्यक्ति को क्या बोलता है? वो बोलता है इतना ही चाहिए बस। तो इसलिए ये काम ठीक है लेकिन ये जो लोभ है इतना भयानक चीज है। आप जो इच्छाओं को पूर्ण करने का साधन प्राप्त करने के बाद भी वो साधन को भी भोग नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया एक कार का, जैसे बहुत मेहनत करके अपनी इच्छा को पूर्ण करने की गाड़ी खरीदा और जैसे दूसरों को देखा कि उसके उससे अच्छा गाड़ी है, वही गाड़ी जो 5 मिनट पहले उसको सुख दे रहा था, आनंद दे रहा था, वही गाड़ी जो है उसको खराब लगने लग जाता है। बोलते क्या है, बकवास है, मुझे कुछ और चाहिए। तो ये लोभ है, इतना भयानक चीज है। इसलिए इधर कहा गया है विमर्शनात्, ये जो अर्थान अर्थ क्षये, ये अर्थ जो है ये कितना अनर्थ है, इक्षये। इक्षये का अर्थ है कि बार बार उसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये अर्थ में अनर्थ को देखना, ये जो है ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। जो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति इस अर्थ में अनर्थ को देख सकता है वो अपना जो व्यवहार है, व्यापार है, त्याग कर सकता है। तब तक वो काम करता ही रहेगा व्यक्ति, तब तक वो रिटायरमेंट होने के बाद भी सोचेगा दूसरा नौकरी मिले। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अर्थ में अनर्थ को देख सकता है। जिस दिन अर्थ में अनर्थ को देखा उसी दिन आप रिजाइन कर दोगे अपने काम करना, अपना धंधा बंद कर दोगे। यू विल जस्ट क्लोज ऑफ योर बिजनेस। जिस दिन आपने अर्थ में अनर्थ को देखा उसी दिन आप नौकरी को रिजाइन कर दोगे। ये स्पष्ट रूप में प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि लास्ट लाइन यही है कि If one discusses a disadvantage of accumulating wealth, ही कैन नेचुरली गिव अ बिजनेस विदाउट डिफिकल्टी, बिना कोई मेहनत के, बिना कोई प्रयास के वो अपना व्यापार को वो बंद कर सकते हैं। यानी जो अपना नौकरी को छोड़ दिया है या बिजनेस छोड़ दिया है, ये समझना चाहिए कि उसके अंदर लोभ खत्म हो गया है। और लोभ खत्म हो गया इसका अर्थ है कि उसको मालूम है कि ये जो काम है ये दुश्मन है, मुझे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उसके अंदर ईर्ष्या भी नहीं है। जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जिसके अंदर क्रोध नहीं है, जिसके अंदर लोभ नहीं है, वही व्यक्ति अपना बिजनेस बंद कर सकता है, अपना जो नौकरी त्याग कर सकता है। जब तक ये चीजें हैं तब तक वो कंटिन्यू करता रहेगा। 50 साल हो गया, 55 साल हो गया, 60 साल हो गया, उसके बाद भी सोचता है कोई और नौकरी मिले तो ढूंढो ना मुझे। कितने लोग आते हैं, अभी प्रभु जी मेरा रिटायरमेंट होने वाला है। एक पिछले हफ्ते एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ तो मेरे प्रोग्राम में आता है, बोले बस मुझे 1 साल में रिटायरमेंट होने वाला है, पता नहीं मुझे क्या करना है, आपके मंदिर में कुछ नौकरी मिल सकता है क्या? तो मैंने कहा कि अगर आप बोल सकते मैं रिटायर हो रहा हूं 1 साल में, मेरे अपना मंदिर में कोई सेवा मिल सकता है क्या, अगर ऐसा पूछे होते तो मैं कितना खुश हो जाता। लेकिन ये जो लोभ है, और उसके बाद ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, बहुत पैसा है, नॉट अ मनी, लेकिन फिर भी नहीं मुझे चाहिए और चाहिए, ये लोभ है। तो प्रभुपाद एक बहुत पावरफुल लाइन लिखते हैं कि डिसएडवांटेज अर्थान अनर्थ, ये अर्थ में धन में अनर्थ को देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में पिछले अध्याय में बहुत चर्चा किया गया है, किस प्रकार ये जो अर्थ है वो हमारा भय का कारण है। भय का कारण क्यों है? हमारी वास्तविक प्राण जो है, प्राण धन कौन है? कृष्ण है। लेकिन भागवतम में कहा गया है द्वितीय अभिनिवेश ईशादपेतोस्पृति भयम द्वितीय अभिनिवेश। भय का अर्थ क्या है? भय क्यों होता है? द्वितीय अभिनिवेश। जब आपका जो प्राण है कोई और चीज को मान के बैठोगे, द्वितीय भगवान से अलग, खास करके इस भौतिक जगत में ये जो धन को कहा जाता है बही प्राण। बही प्राण का अर्थ क्या है? जो बाहर रहने वाला प्राण। वैसे तो हमारे शरीर के अंदर प्राण रहता है, लेकिन ये धन जो है बाहर रहने वाला प्राण माना जाता है। और जैसे किसी का धन क्षीण होता है तो ऐसा लगता है कि उसका प्राण छीन रहा है, ऐसा प्राण खत्म हो रहा है। इसलिए लोग बोलते हैं अरे अरे मेरा खून पसीना करके कमाया और धन खत्म हो रहा है, खून पसीना करके बनाया, यानी वो मेरा प्राण है, चाहे मेरे प्राण ले लो लेकिन धन को रहने दो, क्योंकि मेरा प्राण जो है धन के अंदर रखा है। उसके विषय में पिछली बार जब ये कुछ एक श्लोक आया था, मेरे टर्न में आया था, तो उसमें 7 ऐसे लोग हैं जिसके द्वारा वो धन जो है हर लिया जाता है, उसके वजह से डर उत्पन्न होता है, डर के वजह। वो 7 में से एक व्यक्ति कौन है? वो खुद स्वयं। बड़ा मजेदार चीज था वो कभी विचार नहीं किया था पहले, कि मैंने सोचा कि मान लो कि अपने पास धन है तो वो धन खोने का डर है, कोई आके मैं छुर रख के छीन लेगा, मेरे पत्नी छीन लेगी, मेरे बच्चे उसको हड़प लेंगे, ऐसा डर हो सकता है। लेकिन उधर भागवत में स्वयं लिखा हुआ है, ये लिखा है कि वो डर वो जो धन संचित करने के द्वारा बाकी लोगों से डर तो छोड़ो, वो खुद से डरता है कहीं मैं बराबर रखा हूं कि नहीं, रात को कभी उठ के गिनता है, बराबर गिना कि नहीं, गिन के रखता है, आराम से हाँ बराबर है, तुरंत एक विचार आता है मैं तिजोरी बंद किया कि नहीं बराबर। यानी वो खुद से डर लगता है उसको, यानी मेरे से ही डर, मैं बराबर खर्चा ना कर रहा हूँ, सही जगह खर्चा तो नहीं कर रहा हूँ, गलत जगह तो खर्चा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे विचार मन में आता है, वो खुद से भी डरने लग जाता है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहता। तो ये धन का जो अनर्थ है इसके ऊपर बार बार चर्चा करना है। ये चर्चा करने के द्वारा, ये तत्व विचार करने के द्वारा हृदय से जो डर निकल जाता है। इसलिए ये जो आखिरी जो शब्द है वो क्या है, आखिरी लाइन क्या है? तत्व विचार के द्वारा, यानी भयम तत्व विमर्शनात्। ये तत्व का अर्थ है चित्त अचित ईश्वर भेद संयोगात्। ये चित्त अचित ईश्वर, जीव, जड़ वस्तु भौतिक जगत और ईश्वर भगवान, इन तीनों के बीच में संबंध और ये भेद को जानना, ये तत्व विमर्शनाथ है। जितना व्यक्ति ये तत्व ज्ञान में मग्न रहता है उसको कोई डर नहीं रहता है, विचरंति निर्भयात, निर्भय होके वो घूमता रहता है, उनको कोई विचार नहीं, उनको मालूम है कि अगर मुझे नुकसान होगा तो क्या नुकसान हो सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम सबसे ज्यादा हो तो क्या हो सकता है, मैं मर जाऊंगा, इससे बढ़कर ज्यादा नुकसान तो है नहीं, इससे बढ़कर तो कोई मुझे आ, 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 मेरे आ, मेरे लिए कोई नुकसान तो है नहीं, सबसे ज्यादा हो सकता हानि हो सकता तो क्या हो सकता है, मैं मर सकता हूं, है नहीं? लेकिन भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, तुम मरोगे नहीं क्योंकि जीव जो है सनातन है। तो ये विचार जिसके मन में है उसके हृदय में कोई डर नहीं है, he doesn't have any fear। ये तत्व विमर्शनाथ इसके द्वारा ये भय से मुक्त हो सकते हैं। तो हमारे आचार्य अपने जीवनी से इस बात को दिखाते हैं कि किस प्रकार ये इन चीजों से मुक्त हो सकते हैं। खास करके आज लोकनाथ गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। लोकनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष संगी है। उनके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण उन्होंने पेश किया है। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का रचना करने के लिए संकल्प किए तो वो सबसे परमिशन ले रहे थे, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इसको लिखूं। जब लोकनाथ गोस्वामी के पास आए तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि मैं आपको परमिशन देता हूं एक कंडीशन पर, मेरा नाम उसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी के बारे में ज्यादा ग्रंथों में चर्चा नहीं किया जाता क्योंकि उनको वो अपने आप को इतना दीनहीन मानते थे कि वो सोच रहे थे कि मेरा नाम अगर कोई व्यक्ति सुन लेता है तो उस बस अभी वो उनको पाप लग जाता है, और इतना अपने आप को दीनहीन मान रहे थे कि वो सोच रहे थे कि मैं तो स्वयं पतित हूं, मैं कैसे लोगों को शिष्य बना सकता हूं। उस समय अनेकों लोग लोकनाथ गोस्वामी के पास आके बोल रहे थे आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। बोलते थे कि मैं कैसे मैं नहीं बन सकता हूं, मैं मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। लेकिन एक ऐसे शिष्य थे जो नरोत्तम दास ठाकुर, वो उनको मालूम है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु स्वयं ने उनको सपने में कहा था कि आप जाओ जाके लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लो। तो बहुत प्रयास किया लेकिन लोकनाथ गोस्वामी अपनी नम्रता की वजह से वो बोल रहे थे ये मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। तो लोकनाथ गोस्वामी का सेवा करने लग गए नरोत्तम दास ठाकुर। तो उस समय तो बाथरूम टॉयलेट वगैरह कुछ था नहीं, ऐसे जंगल में फील्ड में जाना पड़ता था। तो लोकनाथ गोस्वामी रोज शौच करने के लिए जाते थे लेकिन ऐसा देख रहे थे कि जब भी रोज जो जाते हैं वो पूरा जो जगह वो साफ रहता था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है बात। तो एक दिन क्या किए, वो शौच करने के बाद वो छुपके से वो देख रहे थे कौन आ रहा है। उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर आए। नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, एक राजा का पुत्र है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में हद्दीर वन में, अभी भी वो जगह है, बहुत सुंदर मंदिर भी है उधर, तो उधर वो साफ सफाई कर रहे हैं। तो ये लोकनाथ गोस्वामी ने अपने शिष्य की नम्रता को देख के, नरोत्तम दास ठाकुर की नम्रता देख के उन्होंने दीक्षा दिलाया। वो भी कैसे दिया, क्योंकि जीव गोस्वामी ने प्रेरित किया नहीं, आगे आने वाला जो वैष्णव समाज है उनके लिए एक उदाहरण होना चाहिए, एक गुरु शिष्य संप्रदाय होना चाहिए। भले वो कितना भी बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, भौतिक दृष्टिकोण से ये गुरु के पास आके दीक्षा लेना अनिवार्य है। ये सिस्टम को स्थापना करने के लिए श्री जीव गोस्वामी स्वयं इन दोनों के बीच में दीक्षा का समारोह को संपन्न किया। स्वयं जीव गोस्वामी अपने हाथों से उन्होंने ये जप माला बनाए और यज्ञ का संपन्न करके ये जो अभी जो दीक्षा का प्रणाली जो चल रहा है ये सबसे पहला हुआ था। कब, ये जीव गोस्वामी ने लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर के बीच में कराया था। पहले दीक्षा तो ऐसे ही हो जाता था, ठीक है अब मेरा शिष्य हो ऐसा, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज ऑफिशियली पहला इधर स्थापना किए गए। इसलिए प्रभुपाद जी ने गुरु पूजा के लिए ये जो श्री गुरु चरण पद्मा ये गीत को सुना चुना, ये जो गीत है लिखा हुआ है नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा, गुरु वंदना करते हैं ना तो नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ है। उधर आखिरी इनमें क्या आता है, लोकेनाथ लोकेरा जीवना, लोकेनाथ का अर्थ इधर कौन है, लोकनाथ गोस्वामी। ये लोकनाथ गोस्वामी कौन है, सारे लोगों का जीवन है। लोक का अर्थ है कि जहां जीवन हो, कहां जीवन है, जहां भक्ति है उधर जीवन है, और भक्ति कहां है, शिष्य के हृदय में है, तो ये शिष्य के हृदय में भक्ति को अपना बना के रखना चाहता है, तो उनको जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी का शरणागति लिए, उसी प्रकार हमको अपने गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए। तो लोकनाथ गोस्वामी का एक बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र है, जो जिनका वर्णन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्रीमद राधा विनोदैक सेवा संपत् समन्वितम पदाम भोजम पद्मनाभजम शिरमल्लोकांत प्रभुम भजे। ये लोकनाथ गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है, जिसके अंदर लिखा गया है श्रीमद राधा विनोदैक सेवा। राधा विनोद जी का विग्रह तो बहुत सुंदर प्रकार प्रकट हुआ, जब कांदीरवन में किशोरी कुंड है उधर लोकनाथ गोस्वामी भजन कर रहे थे, उनको बहुत इच्छा थी, मैं तो भजन कर रहा हूं लेकिन साक्षात भगवान का विग्रह को अगर मैं पूजा करूं तो कितना अच्छा रहेगा। तो भगवान ने उनकी इच्छा को जान लिए, तो इच्छा को जान के स्वयं भगवान प्रकट होकर उन्होंने क्या किया, अपना विग्रह को प्रदान किया। वो विग्रह का नाम है राधा विनोद, और लोकनाथ गोस्वामी बहुत खुश हो गए, लेकिन इतना आनंद में विभोर होते हुए वो भजन में मग्न हो गए विग्रह को प्राप्त करने के बाद। तो विग्रह कहने लगी, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे बुलाया, बुला के कुछ खिलाते नहीं हो, ऐसे भजन कर रहे हो। तो जैसे तुरंत ही बात को सुने विग्रह राधा विनोद स्वयं बोले, तो लोकनाथ गोस्वामी हदमचकित हो गए, बहुत आनंदित हो गए। जाके उन्होंने क्या किया, चावल पकाए, तो चावल के अंदर घी डाल के वो केले के पत्ते के ऊपर भगवान को भोग लगाए। हाँ, तो ये अच्छा शुद्ध आहार माना जाता है, चावल और घी। तो भगवान को भोग लगाए, एकदम बहुत प्रसन्न हो गए। तो उससे भजन भी करते थे और विग्रह का सेवा भी करते थे बहुत प्रेम से। उधर के आजू बाजू के जो भक्तों को ऐसा विचार आया कि इधर एक बहुत सुंदर मंदिर बनना चाहिए, एक मठ बनना चाहिए और इधर पूजा होना चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी ने मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं, राधा विनोद जी हो वो मेरा शरीर ही उनके लिए मंदिर है। एक कपड़े में बांध के एक झोला करके वो झोले को वो गले में टांग के घूमते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी के लिए ये जो राधा विनोद का जो विग्रह ही उनका शरीर ही उनके लिए एक मंदिर के रूप में उन्होंने ये किया। तो ये लोकनाथ गोस्वामी का थोड़ा सा परिचय है, दो मिनट और है। कि जब लोकनाथ गोस्वामी बाल लीला बचपन से उनका एक प्रकार का विरक्ति थी, वो उनको कोई भी भौतिक चीजों में रुचि नहीं था, कोई भी घरेलू बातों में कोई रुचि नहीं था। अचानक एक दिन माता पिता को छोड़ के वो नवद्वीप पहुंच गए। नवद्वीप जाके वो चैतन्य महाप्रभु से उनको मुलाकात हुआ। जैसे मुलाकात हुआ, चैतन्य महाप्रभु अभी संन्यास देने के 2-3 दिन पहले की बात है, तो जाके चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ लिए लोकनाथ गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप जाओ वृंदावन। तो लोकनाथ गोस्वामी समझ गया, ऐसा क्यों बोल रहे, आप जाओ वृंदावन। तो लोकनाथ गोस्वामी जैसे चैतन्य महाप्रभु बात करते उनको समझ में आ गया कि अभी बस कुछ ही दिनों में संन्यास देने वाले है। और जैसे ही ये स्मरण हुआ उनको चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे करके, लोकनाथ गोस्वामी जो है वो बोर करके रोने लगे, ऐसा रोने लगे, और चैतन्य महाप्रभु जो है उधर से चले गए। और चैतन्य महाप्रभु का विरह को अनुभव नहीं करते हुए इधर उधर पागलों जैसे भाग रहे थे। तब चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी के सपने में आके कहे, ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने आलिंगन किए करके एक गुह्य उपदेश दिए उनको। गुह्य उपदेश क्या है कि आप वृंदावन जाओ, जाके और भक्तों को मैं भेजने वाला हूं, वो और भक्त कोई और नहीं, वो मेरे स्वरूप ही है, मेरे भक्त मेरे ही स्वरूप है, तो मैं तुमको उधर मिलूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो उधर उनको थोड़ा सा सांत्वना प्रदान हुआ कि वो सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं वृंदावन आएंगे और उधर मुलाकात होगा करके वो शांत होके वो पहुंचे वृंदावन। अलग अलग जगह भ्रमण करते वो पहुंचे। और इधर चैतन्य महाप्रभु संन्यास देके क्या किया, दक्षिण भारत जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा में पहुंचे। लोकनाथ गोस्वामी को खबर मिला कि अभी चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, तो उनसे मिलने के लिए लोकनाथ गोस्वामी निकल पड़े वृंदावन से। पूरा दक्षिण भारत में घूम घूम के उनको मालूम पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु जो है अभी वृंदावन आए हैं, तो वृंदावन पहुंचे। जैसे वृंदावन पहुंचे तो उनको मालूम पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से निकल के वापस जगन्नाथपुरी जा रहे, तो सोचा जगन्नाथपुरी जाने मिलने के लिए जाऊंगा। तब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उनके सपने, उन्हें कहा कि मैंने कहा था कि मैं आपसे मिलूंगा वृंदावन में, अब वृंदावन से जाके इधर उधर क्यों जाते हो मुझसे मिलने के लिए। मैं स्वयं इधर उपस्थित हूं, किस रूप में? मेरे द्वारा भेजे गए जो अनुचर है उनके द्वारा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सबको आप देखभाल करो। तब लोकनाथ गोस्वामी उधर रह गए और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सारे गोस्वामियों के जो लीडर है। ऐसे माना जाता है कि लोकनाथ गोस्वामी जो अव्यक्त गोस्वामी, छह गोस्वामी जानते हैं, अस्तित्व में सात है, वैसे बाद में तो भक्तिनाथ ठाकुर आठवें हुए, एट गोस्वामी, भक्तिनाथ ठाकुर को ऐसे लिखा जाता है सेवंथ गोस्वामी, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी को मालूम था कि लोकनाथ गोस्वामी का इच्छा है कि उनका नाम कहीं प्रकाशित ना हो, इसलिए इस प्रकार उन्होंने ये किया। ये लोकनाथ गोस्वामी का विषय में थोड़ा सा बातें हमने जो ये सब चर्चा किया, नो मेंशन, बस इतना। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ने एक विशेष भजन लिखा है लोकनाथ गोस्वामी के विषय में, ये तो समय नहीं है इसलिए कभी और चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय। उसको मिला ना, मुझे नहीं मिला। जैसे